नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं मार्कण्डेयजी 14 मन्वंतरों के विषय में सुना रहे थे। तो एक भौत्य नाम का मन्वंतर हुआ था, उसके विषय में सुना रहे हैं। अंतिम है ये। वो कहते हैं कि हे क्रौष्टुक जी, अब तुम भौत्य नाम के मनु के विषय में सुनो। देखो, अंगिरा नाम के एक शिष्य थे जिनका नाम भूति था। भूति, ध्यान से सुनिएगा, बड़े क्रोधी थे। छोटी सी बात के लिए कोई अपराध कर देता तो उसको प्रचंड शाप दे देते थे। उनमें धैर्य शक्ति का अत्यंत अभाव था। उनकी बातें बड़ी कठोर होती थी। और प्राणियों की तो क्या कहे, उनके आश्रम पर हवा बहुत तेज नहीं चलती थी, सूर्य अधिक गर्मी नहीं पहुंचाते थे, डरते थे, बद्दल भी अधिक कीचड़ नहीं होने देते थे। उनके अत्यंत क्रोधी स्वभाव के कारण से चंद्रमा अपनी समस्त किरणों से परिपूर्ण होने पर भी अधिक सर्दी नहीं पहुंचाते थे। सारी ऋतुएं उनकी आज्ञा से अपने आने का क्रम छोड़कर आश्रम के वृक्षों पर ही सदा रहती थी और मुनि के लिए हरदम हर वृक्ष का फल फूल तैयार रहता था। महात्मा भूति के भय से जल भी उनके आश्रम के समीप बहता रहता था और उनका कमंडलू कितना ही जल पी लो भरा रहता था। तपस्या के द्वारा उन्होंने कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त कर ली, परंतु अपने अंदर के स्वभाव को उन्होंने नहीं सुधारा। देखो कैसे तार मिलते हैं। सवेरे 5 बजे की प्रार्थना में महाराज जी ने यही कहा था। बात यहीं से चालू की कि आदमी की कैसी मूर्खता है कि धन बढ़ने से मैं बड़ा हो गया। अरे धन बढ़ा है तो धन बढ़ गया, बस तू क्या बड़ा हो गया, धन बढ़ा हो गया, धन बढ़ गया तो मैं बड़ा हो गया, मैं बढ़ गया, मैं ऊंचा हो गया, धन ऊंचा हो गया, पहले थोड़े से अब जरा रुपए हो गए, धन बढ़ा, तू क्या बढ़ा। ऐसे ही मान बढ़ गया साहब, हमारा यश फैल गया, तो क्या हो गया, यश फैला, तू तेरे क्या फर्क पड़ा। तो स्वभाव को सुधारते हैं, ये मनुष्य की उन्नति है। और स्वभाव को यदि नहीं सुधारते हैं तो मनुष्य की उन्नति नहीं, वस्तु बढ़ जाओ भले ही कितनी, स्वभाव नहीं सुधरा तो कोई मनुष्य की उन्नति नहीं। कैसी तपस्या की देखो, सूर्य वश में, चंद्रमा वश में, हवा वश में, मेघ वश में, सब वश में, तो स्वभाव ठीक नहीं था। सब युग डरते डरते रहते थे उनसे। इस भूति मुनि के एक भाई थे, उनका नाम सुवर्चा था। वे बहुत दूर जगह रहते थे। सुवर्चा ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया तो भूति को निमंत्रित किया कि आप भी आओ। वहां जाने की इच्छा से भूति ने अपने परम बुद्धिमान शांत जितेंद्रिय विनीत गुरु के कार्य में सदा संलग्न रहने वाले सदाचारी और उदार शिष्य मुनिवर शांति से कहा, उसका नाम था शांति, कि वत्स मैं अपने भाई के बुलावे पर उसके यज्ञ में जाऊंगा, तुम इस आश्रम में रहना, तुम्हारे लिए जो कर्तव्य है वो तुम सुनो। प्रतिदिन प्रातःकाल जैसे रोज उठते हो इसी प्रकार से उठ करके सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना, भगवान की प्रार्थना करना, उसके बाद प्रतिदिन के भांति सब कर्म करते हुए एक बात का ध्यान रखना कि हम अग्निहोत्री है, हमारे यहां अग्नि कभी भी शांत नहीं होनी चाहिए, इस अग्नि को प्रज्वलित रखना, अग्नि बुझ न पाए, क्योंकि अग्निहोत्रियों का यह नियम होता है कि यदि उनकी कहीं अग्नि शांत हो गई तो उसके बाद फिर वो वापिस उसके लिए प्रायश्चित के लिए बड़ा अनुष्ठान करना पड़ता है। इस अग्नि का बड़ा महत्व है, इसलिए अग्नि को शांत मत होने देना। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा है मैं उसके अनुसार काम करूंगा। गुरु की आज्ञा पा करके जब शांति नाम का शिष्य गुरु जी को बड़े प्रेम से विदा किया, अपने आश्रम में आकर के वो शांति बैठ गया, सब बातों का ध्यान रखने लगा। इधर वो भूति अपने भाई के वहां यज्ञ में चले गए। शांति गुरु भक्ति के वश में रहकर महात्मा गुरु की सेवा के लिए जब तक समीदा फूल फल आदि जो जुटाते रहते हैं, जो जो उन्होंने आज्ञा दी सब काम करते रहते हैं और भी दूसरे काम कर लेते, तब एक बार भूति मुनि के द्वारा संचित अग्नि वो शांत हो गई। अग्नि को शांत हुआ देख शांति को बड़ा कष्ट हुआ, वे भूति के भय से बहुत चिंतित हुए कि गुरुजी आएंगे अब तो शाप देंगे, यदि मैं इस अग्नि के स्थान में दूसरी अग्नि स्थापित करूं, ये शांत हो गए इसकी जगह उनको क्या है, वो दूसरी लकड़ी रख करके प्रज्वलित करूं, तो गुरुदेव का ऐसा तपस्या का प्रभाव है वो तो सब कुछ प्रत्यक्ष देख लेंगे, और ऐसा करने पर गुरुदेव मुझे अवश्य ही क्रोध में आकर शाप देंगे और मुझे भस्म कर डालेंगे, और मैं ऐसा अपराध करके और गुरु के क्रोध और शाप का कारण बनूं तो अच्छा भी नहीं है, मुझे मारे तो कोई बात नहीं है, अपने लिए इतना शोक नहीं है जितना कि गुरु का अपराध करने का शोक है। अग्नि शांत ये देख करके तो गुरुदेव मुझे निश्चय ही शाप दे देंगे, जिनके प्रभाव से डरकर देवता भी उनके शासन में रहते हैं वे मुझ अपराधी को शाप से क्यों नहीं भस्म कर देंगे, अब क्या करूं, इसका क्या उपाय हो सकता है। अपने गुरु के डर से डरे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शांति मुनि ने अनेक प्रकार की युक्तियां सोची, अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो अपने से बड़े होते हैं, पूजनीय होते हैं, उनकी शरण स्वीकार कर लेने के बाद सब काम सुविधाजनक हो जाते हैं। उन्होंने उस शांति ने मन पर संयम किया, पृथ्वी पर घुटने टेके, हाथ जोड़कर उन्होंने अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए ये स्तोत्र पढ़ा। हे समस्त प्राणियों को जीवनीय शक्ति देने वाले अग्निदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके कई स्थान हैं, आप ही के द्वारा यज्ञ होते हैं। यज्ञों के अंदर प्रदान की हुई सामग्री से देवताओं का पालन होता है। आप देवताओं के मुख हो। जब आप किसी वस्तु को ग्रहण कर लेते हो, उससे वो वस्तु सब देवताओं को मिलती है और देवताओं के माध्यम से वो सब प्राणियों को मिलती है। ये जल आप ही से तो पैदा होता है और जल की वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। उस उन अन्न से प्राणियों की क्षुधा दूर होती है, तो सब प्राणियों के आप परम पोषक हो। आप ही की ऊष्मा से औषधियों का निर्माण होता है। देवता, दानव, यक्ष, दैत्य, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, मृग, सर्प, ये सब के सब प्राणी आपसे तृप्त होते हैं। देवताओं में तेज, सिद्धों में कांति, नागों में विष और पक्षियों में वायु रूप से आप ही तो हो। मनुष्यों में क्रोध आप हो, पक्षी और मृग आदि में मोह आप हो, वृक्षों में स्थिरता है वो आप हो, पृथ्वी में कठोरता है वो आप हो, जल में जो द्रवत्व है वो आप हो, वायु में जल रूप से आप हो। व्यापक होने के कारण आप ही आकाश में आत्मा रूप से स्थित हो। समस्त प्राणियों का पोषण करने के लिए खेती के बीज आप हो, भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ आप हो। दिन, रात और दोनों संध्याएं आप ही के कारण से होती हैं। ये स्वर्ण है, ये आप ही से पैदा होता है। संपूर्ण दृश्य आप हो, परिवर्तनशील काल भी आप ही का स्वरूप है। आपकी जो कराली नाम की जिह्वा है, वो जिह्वा जब आपके मुख से निकलती है तो सारा विश्व है, इसका संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय होता है। आपकी विश्वा नाम की जो जिह्वा है, उसको जब आप निकालते हैं तो प्राणियों का कल्याण होता है। आपकी अनेक जिह्वाएं हैं। काली नाम की जिह्वा है, वो काल को आश्रय देने वाली है। आप सभी दोषों से सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले हो। कोई आपको वन्नी बोलते हैं, कोई अग्नि बोलते हैं, कोई पावक बोलते हैं, कोई सप्तार्ची बोलते हैं, कोई कृषाणु बोलते हैं, कोई हुतासन बोलते हैं। अलग अलग भक्तों के द्वारा अलग अलग आपके नाम रखे हैं। संपूर्ण चर अचर विश्व को आपने स्थित कर रखा है। आप एक होकर भी अनेकों में प्रकट होते हो। अक्षय हो, तुम ही पर्वतों में, वनों में, पृथ्वी में, आकाश में, सब जगह हो। संपूर्ण वेदों में आप ही की महिमा है। यज्ञ परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण आपकी ही प्रसन्नता के लिए सर्वदा अंगों सहित वेद का पाठन करते हैं, पठन पाठन करते हैं। सब स्नानों में तुम्हारे भस्म से किया हुआ स्नान सबसे बढ़कर होता है, इसलिए मुनिगण संध्या काल में उसका विशेष रूप से सेवन करते हैं। हे अग्निदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मेरी रक्षा कीजिए। आपका जो कल्याणमय स्वरूप है वो आज प्रकट कीजिए। मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं, जो कुछ मैंने कहा है उसको आप अपने पुत्र के समान प्रिय मानकर स्वीकार कर लीजिए और मेरे पर कृपा कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे मुनिवर, शांति के इस प्रकार स्तुति करने पर एक तो वो बालक था, एक वो गुरु आज्ञा परायण था और एक अत्यंत शुद्ध हृदय का था, सत्यवादी था। सत्यवादी के द्वारा जो स्तोत्र वगैरह पढ़े जाते हैं वो तत्काल फल देने वाले होते हैं। ये खास बात, लोग कहते हैं कि भागवत में लिखा है कि इस कथा को सुनते हैं तो ये लाभ होता है, ऐसा करते हैं तो ये लाभ होता है, और भी पुराणों में कहीं आते, वो लाभ हमारे हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई, हमारा पहले लाभ की तरफ तो देखते हैं, ये नहीं देखा हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं, हमारे अंदर किसी प्रकार की कामना तो नहीं है, लोभ तो नहीं है, धनादि की इच्छा तो नहीं है। ये सब देखने के बाद फिर सोचो कि भाई स्तोत्र हमने पढ़ा, इसका लाभ हुआ कि नहीं। अग्निदेव उस बालक की शुद्ध हृदय से की हुई स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते अनेक अग्नि की ज्वालाओं में से अंदर वो देवता रूप से प्रकट हुए। अग्निदेव उस स्तोत्र से इतने संतुष्ट थे कि वो प्रेम से मुस्कुराते हुए शांति के सामने खड़े हो गए। शांति ने उनको प्रणाम किया तो अग्निदेव ने कहा, बोलो बालक, तुमने जो भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति की है मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ हूं। मैं इतना प्रसन्न हूं, तुम आज क्या चाहते हो? जो तुम चाहो सब वरदान देना चाहता हूं। मेरे वरदानों की कोई संख्या नहीं है, जितने वरदान तुम ले सकते हो, तुम्हारी जो जो इच्छा है सब तुम बोलो, मांग। शांति देव ने कहा, भगवान, मैं तो आपके दर्शनों से कृतार्थ हो गया। आज तक तो केवल आपके और स्वरूप को तो देखता था, लेकिन आज इस देव स्वरूप में आपका प्रथम बार दर्शन हुआ है। मैं आपसे बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, विनय भाव से निवेदन करता हूं, आप उसे कृपा करके सुने, और यदि मैं अनुचित कह जाऊं तो आप मुझे क्षमा कर दें। हे देव, मेरे आचार्य गुरुदेव भूति ने अपने आश्रम से भाई के यज्ञ में जाने के लिए जब तैयारी की तब उन्होंने मुझे कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस अग्नि को प्रज्वलित रखना, क्योंकि ये अग्निहोत्रों का मुख्य काम है। जब वे लौट कर आएंगे और इस स्थान को आपसे सनाथ देखें तब तो मेरा काम ठीक है, अर्थात आप इसमें प्रज्वलित होते हुए रहेंगे तब तो ठीक है, और यदि वे प्रज्वलित नहीं रहे तो फिर गुरु की कृपा मेरे पर नहीं रहेगी। मैं गुरु की कृपा चाहता हूं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको कष्ट दिया है। अग्निदेव ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अग्निहोत्री ब्राह्मणों के यहां रहने में तो मुझे आनंद मिलता है, कोई और वरदान भी मांग ले, ये तो काम हो गया, दूसरा और वरदान मांग लो। अब देखो, दूसरा जो वरदान मांगा है ना उसका देखिए कितनी बड़ी बात है। उसने हाथ जोड़ करके अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव, मैं आपसे एक दूसरा वरदान ये चाहता हूं, मेरे गुरुदेव के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें कोई सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो जाए तो उनका पुत्र में स्नेह बढ़ेगा, और एक बार उनके हृदय से जब स्नेह की धारा बह निकलेगी तब ये बार बार किसी को क्रोध में आके श्राप दे देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, किसी से कुछ कर देते हैं, इनका किसी के प्रति प्रेम नहीं है, क्योंकि इनके अंदर प्रेम करने की वृत्ति नहीं हुई। अब आप यदि इनको एक सुयोग्य पुत्र दे देंगे तब उनका हृदय सबके प्रति कोमल हो जाएगा। ये अब दूसरा वरदान दे दीजिए, अब मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। अग्निदेव इतने खुश हुए, हे बालक तुमने तो आज विलक्षण वरदान मांगा, तुम मुझसे अपने लिए कुछ भी मांग सकते थे, नहीं मांगा, तुमने गुरु के लिए वरदान मांगे हैं। शांति की ये बात सुनकर अग्निदेव ने कहा, हे बालक तुमने गुरु के लिए दो वरदान मांगे हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इससे मेरे मन में तुम्हारे प्रति और प्रसन्नता पैदा हो गई। अब मैं तुम्हें क्या कहूं, तुमने गुरु के लिए जो मांगा है वो सब तुमको प्राप्त हो जाएगा, उनके एक पुत्र होगा, ऐसा विलक्षण पुत्र होगा, सब प्राणियों के प्रति उसकी मित्रता बढ़ जाएगी, और उनका पुत्र है वो भौत्य नाम से मनवंतरों का प्रसिद्ध स्वामी हो जाएगा, महाबलशाली महापराक्रमी परम बुद्धिमान होगा, जो एकाग्र चित्त होकर इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करेगा, जो तुमने की है उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारे उसके पुण्य बढ़ जाएंगे, यज्ञों में पर्व के समय तीर्थों में होम कर्म में तुम्हारे स्तोत्र का पाठ मुझे पुष्टि करने वाला होगा, पूर्णिमा अमावस्या तथा अन्य पर्वों पर मनुष्यों के द्वारा सुना हुआ मेरा ये स्तोत्र सारे पापों का नाश करने वाला होता है। इतना कहकर अग्निदेव वैसे ही अदृश्य हो गए जैसे दीपक की लौ में अग्नि अकस्मात बुझ जाती है। ये देखो ये अदृश्य होना ऐसा है। अग्निदेव के चले जाने पर शांति का चित्त बहुत संतुष्ट हो गया, उनके शरीर में बड़ा हर्ष हुआ, और वो यूं चुपचाप बैठा था, चेहरे पर अपार प्रसन्नता थी। इतने में ही गुरुजी आ गए, गुरुजी को आते देखा, इधर तो गुरुजी का आना हुआ, उधर अग्निदेव जो अग्निहोत्र में थे वो प्रज्वलित हो गए। तो शांति ने गुरु के सामने जाकर प्रणाम किया, गुरुदेव पधार गए, विराजमान हो गए। गुरु ने कहा, वत्स क्या बात है, तुम्हें देखते ही मेरे अंदर बहुत स्नेह बढ़ रहा है, मैं नहीं जानता कि ये क्या बात हो गई, तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। शांति ने नीचा मुख किया, गुरु ने पूछा, बात क्या है बेटा। श्रद्धा के कारण से शांति की आंखों से बड़े विचित्र भाव के आंसू गिरने लगे। गुरु ने बड़ी कोमलता से पूछा, वत्स क्या बात है। शांति ये सब बातें गुरुदेव से कहना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसमें शांति की अपनी महिमा थी, परंतु गुरुदेव की बार बार आज्ञा हुई तो शांति ने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो रही है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। तू बोलो वत्स, मेरी आज्ञा है, तभी तो मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा हूं गुरुदेव। आप यहां से भाई के यज्ञ में पधार गए थे, पीछे से एक दिन अग्नि बुझ गई, आपके स्वभाव से मैं परिचित था, मेरे मन में बड़ा भय हुआ, फिर मैंने कोई उपाय नहीं देखा तो मैं अग्निदेव की शरण में चला गया और उसके बाद अग्निदेव की स्तुति करी, अग्निदेव प्रकट हो गए और मैंने कहा हे अग्निदेव, आप गुरु की अग्निहोत्र शाला में प्रज्वलित हो जाइए और मेरे गुरुदेव को आप एक श्रेष्ठ पुत्र रत्न दीजिए ताकि मेरे गुरु का स्वभाव स्नेहिल हो जाए, मतलब सब में प्रेम करने वाला हो जाए। ये बात सुनकर गुरु के नेत्र स्नेह के कारण से सजल हो गए, उन्होंने शांति को हृदय से लगा लिया और उन्हें अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया। बेटा, तुमने मेरे लिए इतना ऊंचा वरदान मांगा है, बहुत स्नेह करने लगे। उन भूति नाम के ऋषि के आगे चलकर भौत्य नाम का बड़ा विलक्षण पुत्र हुआ, जो अब आगे 14वें मन्वंतर में मनु बनेगा। उसकी उत्पत्ति की ये मैंने तुमको कथा सुनाई है। इस प्रकार से मैंने 14 मन्वंतरों का वर्णन कर दिया है। एक एक मन्वंतर की कथा सुनने में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं और इनकी कथा सुनने से मनुष्य की बुद्धि आत्मकल्याण की ओर अग्रेसित होती है। क्रौष्टुक मुनि जो है वो आगे पूछते हैं कि मैं संपूर्ण राजाओं का वंश जिसके आदि ब्रह्मा जी हैं उनके विषय में कुछ सुनना चाहता हूं। मार्कंडेय जी उस विषय का वर्णन आगे करेंगे। बहुत बढ़िया लगा।